अंतर्द्रवीय जालिका या तो चिकना या खुरदरा हो सकता है, और सामान्य तौर पर इसका कार्य शेष कोशिका के कार्य करने के लिए प्रोटीन का उत्पादन करना है। खुरदुरे अंतर्द्रवीय जालिका पर राइबोसोम होते हैं, जो छोटे गोल अंग होते हैं जिनका कार्य उन प्रोटीनों को बनाना है। परिभाषा: खुरदरा अंतर्द्रवीय जालिका एक कोशिकीय अंग है जो ऊतकों और चैनलों की कई परतों से बना होता है। ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह क्षेत्र प्रदान करता है। ये खुरदरी होती है क्योंकि इसकी सतह राइबोसोम से ढकी होती है। ये राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। रफ अंतर्द्रवीय जालिका, प्रायः संक्षिप्त RER या रफ ER, जिसे ग्रैनुलर अंतर्द्रवीय जालिका भी कहा जाता है, कि सतह प्रोटीन निर्माण राइबोसोम से जड़ी होती है जो इसे खुरदरा रूप देती है, इसलिए इसका नाम। खुरदरे अंतर्द्रवीय जालिका पर राइबोसोम का बंधन स्थल ट्रांसलोकोन है। आंतरिक झिल्ली तंत्र प्रकृति में हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, वे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक केंद्रक की उपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं मानी जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली बद्ध अंगों की उपस्थिति होती है। सभी झिल्ली बद्ध अंगों की अलग अलग संरचनाएं और कार्य होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन प्रणाली में वे अंग सम्मिलित होते हैं जो समन्वित तरीके से काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम किसी अन्य अंग के साथ समन्वित तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए वे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अंतःप्रद्रवीय जालिका, इसमें हम अंतर्द्रवीय जालिका के कार्य और संरचना के बारे में जानेंगे। ये रेटिकुलम का एक नेटवर्क है जो केवल छोटी ट्यूबुलर संरचनाएं हैं जो साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरी हुई हैं। अंतर्द्रवीय जालिका तीन प्रकार की संरचनाओं से बनता है, सिस्टर्न, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स। सिस्टर्न में लंबी और चपटी संरचनाएं हैं। इनमें थैली जैसी और आपस में जुड़ी हुई संरचनाएं भी होती हैं। कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित होती हैं, वो स्थान है जहां हम इन कुंडों का पता लगा सकते हैं। वे उन कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं जिनकी सिंथेटिक भूमिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। अग्न्याशय और मस्तिष्क की कोशिकाएं ऐसे उदाहरण हैं जहां सिस्टर्न पाए जाते हैं। इन सिस्टर्न में राइबोसोम की बड़ी उपइकाइयां होती हैं। राइबोसोम की बड़ी उपइकाई 60S है। नलिकाओं ये जालीदार संरचना बनाते हैं। उनमें से कुछ की शाखाएं होती हैं और कुछ अशाखित होते हैं। वे सिस्टर्न और वेसिकल्स के साथ साथ जालीदार प्रणाली बनाते हैं। इन पर कोई राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। वे वहां प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहां कोशिकाएं लिपिड और स्टेरोल संश्लेषण में सम्मिलित होती हैं। पुटिकाओं पुटिकाएं झिल्ली से बंधी रिक्तिका संरचनाएं हैं। वे अंडाकार है। अग्न्याशय की कोशिकाओं में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेसिकल्स एकमात्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर संरचनाएं हैं जो स्पर्मोसाइट्स में पाई जाती हैं। अंतर्द्रवीय जालिका इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो अलग अलग डिब्बों में विभाजित करने में मदद करता है। वे डिब्बे हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट आंतरिक स्थान बनाता है और घेरता है। यह अंतर्द्रवीय जालिका से घिरा होता है। एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये स्थान अंतर्द्रवीय जालिका के बाहर उपस्थित होता है। अंतर्द्रवीय जालिका के प्रकार: अंतर्द्रवीय जालिका को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। इन्हें उनकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है। वे हैं स्मूथ अंतर्द्रवीय जालिका, रफ अंतर्द्रवीय जालिका। रफ अंतर्द्रवीय जालिका: रफ अंतर्द्रवीय जालिका में राइबोसोम होते हैं। इनकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो खुरदरे धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे रफ अंतर्द्रवीय जालिका के रूप में जाना जाता है। इसे दानेदार जालिका के नाम से भी जाना जाता है। वे व्यापक हैं और केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ निरंतरता में उपस्थित हैं। रफ अंतर्द्रवीय जालिका में दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, राइबोफोरिन I और राइबोफोरिन II। ये राइबोसोमल सबयूनिट के जुड़ाव के लिए उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से यह 80S राइबोसोम की 60S सबयूनिट को जोड़ने के लिए उपस्थित है। रफ अंतर्द्रवीय जालिका के कार्य हैं: एक, चूंकि उनमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है, वे प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं। चूंकि वे प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं, वे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। न केवल संश्लेषण, बल्कि वे प्रोटीन के स्राव के स्थानों में भी उपस्थित होते हैं। दो, वे स्मूथ अंतर्द्रवीय जालिका को जन्म देने के लिए जिम्मेदार हैं। तीन, वे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइमों के अग्रदूत प्रदान करने में मदद करते हैं। रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका संरचना। रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका को इसके स्वरूप के कारण ये नाम दिया गया है। ये जुड़ी हुई चपटी थैलियों की एक श्रृंखला है जिसकी बाहरी सतह पर कई राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। ये यकृत में प्रोटीन, हार्मोन और ग्रंथियों में अन्य पदार्थों को संश्लेषित और स्रावित करता है। रफ ईआर उन कोशिकाओं में प्रमुख है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है, जैसे हेपेटोसाइट्स। रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य। रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सम्मिलित होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह जालिका खुरदरी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम होते हैं और ये इसके खुरदुरे स्वरूप के लिए जिम्मेदार होते हैं। चूंकि रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम जुड़े होते हैं, वे प्रोटीन संश्लेषण की साइट है और रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका उसी तरह काम करता है। रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि यह स्मूथ अंतर्द्रव्यीय जालिका को जन्म देने में मदद करता है। रफ ईआर के अधिकांश कार्य प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े हैं। खुरदरा अंतर्द्रव्यीय जालिका भी प्रोटीन तह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणवत्ता नियंत्रण सही प्रोटीन फोल्डिंग के संबंध में भी सुनिश्चित करता है। प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन फोल्डिंग के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन छटाई है। अभ्यास प्रश्न एक, रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या है परिभाषित करें। दो, अंतर्द्रव्यीय जालिका के प्रकार लिखें। तीन, रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य लिखिए। चार, रफ अंतर्द्रव्यीय जालिका की संरचना क्या है।